श्री परमात्मने नमः। गीता का सार अध्याय 9 श्लोक 34। मन, बुद्धि और भक्ति से पाओ भगवान को। स्वागत है गीता का सार, जगत का सार में। कृपया इस दिव्य ज्ञान को अधूरा न सुने, क्योंकि इससे गीता जी का अनादर हो सकता है। यदि आपके पास समय कम है तो आप शुरुआत में ही छोड़ सकते हैं। हम या भगवान बुरा नहीं मानेंगे। कल हमने जाना था कि भगवान कहते हैं, जब स्त्रियां, वैश्य, शूद्र और पापयोनि तक मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं, तो पुण्यात्मा भक्तों का क्या कहना। जीवन दुखमय और अनित्य है, इसलिए हमें इसी जीवन में भगवान का स्मरण करना चाहिए। श्लोक, मन्मना भव मद्भक्तो मद्याजी मा नमस्कुरु। मामे वैश्यसि युक्तवैव मात्मानं मत्परायणा। भावार्थ, हे अर्जुन, तू मुझ में मन लगा, मेरा भक्त बन, मेरी पूजा कर और मुझे नमस्कार कर। इस प्रकार मुझ में लीन होकर तू मुझे ही प्राप्त होगा। भगवान को प्राप्त करने के चार सरल मार्ग। मन्मना, मन को भगवान में लगाना। मद्भक्त, भक्त बनना। मद्याजी, पूजा करना। मां नमस्कुरु, नमस्कार करना, आत्मसमर्पण। यदि कोई इन चारों को अपनाए तो वह निश्चित रूप से भगवान को प्राप्त कर सकता है। मन और बुद्धि जब प्रभु में स्थिर हो जाती है, तब जीवन की हर कठिनाई सरल हो जाती है। श्री हरि बोलो। ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता जी की जय। गीता सुगीता कर्तव्या किमन्यः शास्त्र विस्तरः, या स्वयं पद्मनाभस्य मुख पद्माद्विनयः श्रिता। अथ ध्यानम्। शांताकारं भुजक शयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्व आधारं गगन सदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकांतं कमल नयन योगिभिः ध्यान गम्यं वंदे विष्णो भव भैहरं सर्व लोकैक नाथम्। यं ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्रमृतः स्तुन्वन्ति दिव्यैः स्तवैर्वेदैः सांग पदक्रमोपनिषदे गायन्ति यं सामगाः। ध्यान अवस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यांतर न विदुह सुर असुरगणा देवाय तस्मै नमः। वसुदेव सुतं देव कंस चानूर मर्दनम्। देव की परमानंदम कृष्ण वंदे जगद्गुरुम्।
श्लोक 34। मन्मना भव मद्भक्तो मद्याजी मा नमस्कुरु। मामे वैश्यसि युक्त वैव मात्मान मत्परायण। उच्चारण की विधि, मन्मना भव मद्भक्त मद्याजी माम नमस्कुरु माम एव एष्यसि युक्त्वा एवं आत्मानं मत्परायण। 34। शब्दार्थ, मन्मना अर्थात मुझ में मन वाला, भव अर्थात हो, मद्भक्त अर्थात मेरा भक्त, भव अर्थात बन, मद्याजी अर्थात मेरा पूजन करने वाला, भव अर्थात हो, माम अर्थात मुझको, नमस्कुरु अर्थात प्रणाम कर, एवं अर्थात इस प्रकार, आत्मानं अर्थात आत्मा को, मुझ में युक्त्वा अर्थात नियुक्त करके, मत्परायण अर्थात मेरे परायण होकर, तू माम अर्थात मुझको, एव अर्थात ही, एष्यसि अर्थात प्राप्त होगा। अर्थ, मुझ में मन वाला हो, मेरा भक्त बन, मेरा पूजन करने वाला हो, मुझको प्रणाम कर। इस प्रकार आत्मा को मुझ में नियुक्त करके मेरे परायण होकर तू मुझको ही प्राप्त होगा। 34। व्याख्या, अपने हृदय की बात वहीं कही जाती है जहां सुनने वाले में कहने वाले के प्रति दोष दृष्टि न हो, प्रत्युत आदर भाव हो। अर्जुन दोष दृष्टि से रहित हैं, इसलिए भगवान ने उनको अनसुइवे 9:1 कहा है। इसी कारण भगवान यहां अर्जुन के सामने अपने हृदय की गोपनीय बात कह रहे हैं। मद्भक्त, मेरा भक्त हो जा कहने का तात्पर्य है कि तू केवल मेरे साथ ही अपनापन कर, केवल मेरे साथ ही संबंध जोड़, जो कि अनादिकाल से स्वतः सिद्ध है। केवल भूल से ही शरीर और संसार के साथ अपना संबंध मान रखा है, अर्थात मैं अमुक वर्ण का हूं, अमुक आश्रम का हूं, अमुक संप्रदाय का हूं, अमुक नाम वाला हूं, इस प्रकार वर्ण आश्रम आदि को अपनी अहंता में मान रखा है। इसलिए अब असतरूप से बनी हुई अवास्तविक अहंता को वास्तविक सतरूप में बदल दे कि मैं तुम्हारा हूं और तुम मेरे हो। फिर तेरा मेरे साथ स्वाभाविक ही अपनापन हो जाएगा, जो कि वास्तव में है। मन्मना भव, मन वहीं लगता है जहां अपनापन होता है, प्रियता होती है। तेरा मेरे साथ जो अखंड संबंध है उसको मैं तो नहीं भूल सकता, पर तू भूल सकता है, इसलिए तेरे को मेरे में मनवाला हो जा, ऐसा कहना पड़ता है। मद्या जी, मेरा पूजन करने वाला हो, अर्थात तू खाना पीना, सोना जगना, आना जाना, काम धंधा करना आदि जो कुछ क्रिया करता है, वह सबकी सब मेरी पूजा के रूप में ही कर, उन सबको मेरी पूजा ही समझ। मां नमस्कुरु, मेरे को नमस्कार कर, कहने का तात्पर्य है कि मेरा जो कुछ अनुकूल, प्रतिकूल या सामान्य विधान हो, उसमें तू परम प्रसन्न रह। मैं चाहे तेरे मन और मान्यता से सर्वथा विरुद्ध फैसला दे दूं, तो भी उसमें तू प्रसन्न रह। जो मनुष्य हानि और परलोक के भय से मेरे चरणों में पड़ते हैं, मेरे शरण होते हैं, वे वास्तव में अपने सुख और सुविधा के ही शरण होते हैं, मेरे शरण नहीं। मेरे शरण होने पर किसी से कुछ भी सुख सुविधा पाने की इच्छा होती है, तो वह सर्वथा मेरे शरणागत कहाँ हुआ? कारण कि वह जब तक कुछ न कुछ सुख सुविधा चाहता है, तब तक वह अपना कुछ स्वतंत्र अस्तित्व मानता है। वास्तव में मेरे चरणों में पड़ा हुआ वही माना जाता है जो अपनी कुछ भी मान्यता न रखकर मेरी मर्जी में अपने मन को मिला देता है। उसमें मेरे से ही नहीं, प्रत्युत संसार मात्र से भी अपनी सुख सुविधा, सम्मान की किंचित गंध मात्र भी नहीं रहती। अनुकूलता प्रतिकूलता का ज्ञान होने पर भी उस पर उसका कुछ भी असर नहीं होता, अर्थात मेरे द्वारा कोई अनुकूल प्रतिकूल घटना घटती है तो मेरे परायण रहने वाले भक्त की उस घटना में विषमता नहीं होती। अनुकूल प्रतिकूल का ज्ञान होने पर भी वह घटना उसको दो रूप से नहीं दिखती, प्रत्युत केवल मेरी कृपा रूप से दिखती है। मेरा किया हुआ विधान चाहे शरीर के अनुकूल हो चाहे प्रतिकूल हो, मेरे विधान से कैसी भी घटना घटे, उसको मेरा दिया हुआ प्रसाद मानकर परम प्रसन्न रहना चाहिए। अगर मन के प्रतिकूल से प्रतिकूल घटना घटती है तो उसमें मेरी विशेष कृपा माननी चाहिए, क्योंकि उस घटना में उसकी सम्मति नहीं है। अनुकूल घटना में उसकी जितने अंश में सम्मति हो जाती है, उतने अंश में वह घटना उसके लिए अपवित्र हो जाती है। परंतु प्रतिकूल घटना में केवल मेरा ही किया हुआ शुद्ध विधान होता है, इस बात को लेकर उसको परम प्रसन्न होना चाहिए। मनुष्य प्रतिकूल घटना को चाहता नहीं, करता नहीं और उसमें उसका अनुमोदन भी नहीं रहता, फिर भी ऐसी घटना घटती है तो उस घटना को उपस्थित करने में कोई भी निमित्त क्यों न बने, और वह भी भले ही किसी को निमित्त मान ले, पर वास्तव में उस घटना को घटाने में मेरा ही हाथ है, मेरी ही मर्जी है। राम कीन्ह चाहे सोई होई, करे अन्यथा अस नहीं कोई। मानस एक 128 एक। इसलिए मनुष्य को उस घटना में दुखी होना और चिंता करना तो दूर रहा, प्रत्युत उसमें अधिक से अधिक प्रसन्न होना चाहिए। उसकी यह प्रसन्नता मेरे विधान को लेकर नहीं होनी चाहिए, किंतु मेरे को, विधान करने वाले को लेकर होनी चाहिए। कारण कि अगर उसमें उस मनुष्य का मंगल न होता तो प्राणी मात्र का परम सुहृद मैं उसके लिए ऐसी घटना क्यों घटाता? इसी प्रकार हे अर्जुन, तू भी सर्वथा मेरे चरणों में पड़ जा, अर्थात मेरे प्रत्येक विधान में परम प्रसन्न रह। जैसे कोई किसी का अपराध करता है तो वह उसके सामने जाकर लंबा पड़ जाता है और उससे कहता है कि आप चाहे दंड दें, चाहे पुरस्कार दें, चाहे दुत्कार दें, चाहे जो करें, उसी में मेरी परम प्रसन्नता है। उसके मन में यह नहीं रहता कि सामने वाला मेरे अनुकूल ही फैसला दे। ऐसे ही भक्त भगवान के सर्वथा शरण हो जाता है तो भगवान से कह देता है कि हे प्रभो, मैंने न जाने किन किन जन्मों में आपके प्रतिकूल क्या क्या आचरण किए हैं, इसका मेरे को पता नहीं है, परंतु उन कर्मों के अनुरूप आप जो परिस्थिति भेजेंगे वह मेरे लिए सर्वथा कल्याणकारक ही होगी, इसलिए मेरे को किसी भी परिस्थिति में किंचन मात्र भी असंतोष न होकर प्रसन्नता ही प्रसन्नता होगी। हे नाथ, मेरे कर्मों का आप कितना ख्याल रखते हैं कि मैंने न जाने किस किस जन्म में किस किस परिस्थिति में परवश होकर क्या क्या कर्म किए हैं, उन संपूर्ण कर्मों से सर्वथा रहित करने के लिए आप कितना विचित्र विधान करते हैं। मैं तो आपके विधान को किंचन मात्र भी समझ नहीं सकता और मेरे में आपके विधान को समझने की शक्ति भी नहीं है, इसलिए हे नाथ, मैं उसमें अपनी बुद्धि क्यों लगाऊं। मेरे को तो केवल आपकी तरफ ही देखना है, कारण कि आप जो कुछ विधान करते हैं उसमें आपका ही हाथ रहता है, अर्थात वह आपका ही किया हुआ होता है, जो कि मेरे लिए परम मंगलमय है। यही मां नमस्कुरु का तात्पर्य है। माम वैश्यसी युक्त वैव मात्मान मत्परायण, यहां एवं का तात्पर्य है कि मद भक्त से तू स्वयं मेरे अर्पित हो गया, मनमना से तेरा अंतःकरण मेरे परायण हो गया, मद्याजी से तेरी मातृक्रियाएं और पदार्थ मेरी पूजा सामग्री बन गए, और मां नमस्कुरु से तेरा शरीर मेरे चरणों के अर्पित हो गया। इस प्रकार मेरे परायण हुआ तू मेरे को ही प्राप्त होगा। युक्त वैव मात्मानम, अपने आप को मेरे में लगाकर कहने का तात्पर्य यह हुआ कि मैं भगवान का ही हूं, ऐसे अपनी अहंता का परिवर्तन होने पर शरीर, इंद्रिया, मन, बुद्धि, पदार्थ, क्रिया, ये सबके सब मेरे में ही लग जाएंगे। इसी का नाम शरणागति है। ऐसी शरणागति होने पर मेरी ही प्राप्ति होगी, इसमें संदेह नहीं है। मेरी प्राप्ति में संदेह वहीं होता है जहां मेरे सिवाय दूसरे की कामना है, आदर है, महत्व बुद्धि है। कारण कि कामना, महत्व बुद्धि, आसक्ति आदि होने पर सब जगह परिपूर्ण रहते हुए भी मेरी प्राप्ति नहीं होती। मत्परायण का तात्पर्य है कि मेरी मर्जी के बिना कुछ भी करने कराने की किंचन मात्र भी स्फुरना नहीं रहे, मेरे साथ सर्वथा अभिन्न होकर मेरे हाथ का खिलौना बन जाए। विशेष बात एक, भगवान का भक्त बनने से, भगवान के साथ अपनापन करने से, मैं भगवान का हूं इस प्रकार अहंता को बदल देने से मनुष्य में बहुत जल्दी परिवर्तन हो जाता है। वह परिवर्तन यह होगा कि वह भगवान में मन वाला हो जाएगा, भगवान का पूजन करने वाला बन जाएगा और भगवान के मात्र विधान में प्रसन्न रहेगा। इस प्रकार इन चारों बातों से शरणागति पूर्ण हो जाती है, परंतु इन चारों में मुख्यतः भगवान का भक्त बनने की ही है। कारण कि जो स्वयं भगवान का हो जाता है उसके न मन बुद्धि अपने रहते हैं, न पदार्थ और क्रिया अपने रहते हैं और न शरीर अपना रहता है। तात्पर्य है कि लौकिक दृष्टि में जो अपनी कहलाने वाली चीजें हैं, जो कि उत्पन्न और नष्ट होने वाली हैं, उनमें से कोई भी चीज अपनी नहीं रहती। स्वयं के अर्पित हो जाने से मात्र प्राकृत चीजें भगवान की ही हो जाती हैं। उनमें से अपनी ममता उठ जाती है। उनमें ममता करना ही गलती थी, वह गलती सर्वथा मिट जाती है। दो, मनुष्य संसार के साथ कितनी ही एकता मान ले तो भी वे संसार को नहीं जान सकते। ऐसे ही शरीर के साथ कितनी ही अभिन्नता मान ले तो भी वे शरीर के साथ एक नहीं हो सकते और उसको जान भी नहीं सकते। वास्तव में संसार शरीर से अलग होकर ही उनको जान सकते हैं। इस रीति से परमात्मा से अलग रहते हुए परमात्मा को यथार्थ रूप से नहीं जान सकते। परमात्मा को तो वे ही जान सकते हैं जो परमात्मा से एक हो गए हैं, अर्थात जिन्होंने मैं और मेरापन सर्वथा भगवान के समर्पित कर दिया है। मैं और मेरापन तो दूर रहा, मैं और मेरे पन की गंध भी अपने में न रहे कि मैं भी कुछ हूं, मेरा भी कोई सिद्धांत है, मेरी भी कुछ मान्यता है आदि। जैसे प्राणी शरीर के साथ अपनी एकता मान लेता है तो स्वाभाविक ही शरीर का सुख दुख अपना सुख दुख दिखता है, फिर उसको शरीर से अलग अपने अस्तित्व का भान नहीं होता। ऐसे ही भगवान के साथ अपनी स्वतः सिद्ध एकता का अनुभव होने पर भक्त का अपना किंचन मात्र भी अलग अस्तित्व नहीं रहता। जैसे संसार में भगवान की मर्जी से जो कुछ परिवर्तन होता है उसका भक्त पर असर नहीं पड़ता, ऐसे ही उसके स्थूल, सूक्ष्म और कारण शरीर में जो कुछ परिवर्तन होता है उसका उस पर कुछ भी असर नहीं पड़ता। उसके शरीर द्वारा भगवान की मर्जी से स्वतः स्वाभाविक क्रिया होती रहती है। यही वास्तव में भगवान की परायणता है। भगवान को प्राप्त होने का तात्पर्य है कि भगवान के साथ अभिन्नता हो जाती है, जो कि वास्तविकता है। यह अभिन्नता भेदभाव से भी होती है और अभेदभाव से भी होती है। जैसे श्रीजी की भगवान श्री कृष्ण के साथ अभिन्नता है। मूल में भगवान श्री कृष्ण ही श्रीजी और श्री कृष्ण इन दो रूपों में प्रकट हुए हैं। दो रूप होते हुए भी श्रीजी भगवान से भिन्न नहीं हैं और भगवान श्रीजी से भिन्न नहीं हैं। परंतु परस्पर रस, प्रेम का आदान प्रदान करने के लिए उनमें योग और वियोग की लीला होती रहती है। वास्तव में उनके योग में भी वियोग है और वियोग में भी योग है, अर्थात योग से वियोग और वियोग से योग पुष्ट होता रहता है, जिसमें अनिर्वचनीय प्रेम की वृद्धि होती रहती है। इस अनिर्वचनीय और प्रतिक्षण वर्धमान प्रेम को प्राप्त हो जाना ही भगवान को प्राप्त होना है। सातवें और नवें अध्याय के विषय की एकता। सातवें अध्याय के आरंभ में भगवान ने विज्ञान सहित ज्ञान अर्थात राजविद्या को पूर्णतया कहने की प्रतिज्ञा की थी। ज्ञान तेह सविज्ञानमिदं वक्ष्यामि शेषतः सात दो। सातवें अध्याय में भगवान के कहने का जो प्रवाह चल रहा था, आठवें अध्याय के आरंभ में अर्जुन के प्रश्न करने से उसमें कुछ परिवर्तन आ गया। अतः आठवें अध्याय का विषय समाप्त होते ही भगवान अर्जुन के बिना पूछे ही इदं तु ते गुह्यत्म प्रवक्ष्याम्यन्सुवे ज्ञान विज्ञान सहितं नौ एक कहकर अपनी तरफ से पुनः विज्ञान सहित ज्ञान कहना शुरू कर देते हैं। सातवें अध्याय में भगवान ने जो विषय तीस श्लोकों में कहा था, उसी विषय को नवें अध्याय के आरंभ से लेकर दसवें अध्याय के ग्यारहवें श्लोक तक लगातार कहते ही चले जाते हैं। इन श्लोकों में कही हुई बातों का अर्जुन पर बड़ा प्रभाव पड़ता है, जिससे वे दसवें अध्याय के बारहवें श्लोक से अठारहवें श्लोक तक भगवान की स्तुति और प्रार्थना करते हैं। तात्पर्य यह हुआ कि सातवें अध्याय में कही गई बात को भगवान ने नवें अध्याय में संक्षेप से, विस्तार से अथवा प्रकारांतर से कहा है। सातवें अध्याय के पहले श्लोक में मय्यासक्तं ना आदि पदों से जो विषय संक्षेप से कहा था, उसी को नवें अध्याय के चौंतीसवें श्लोक में मन्मना आदि पदों से थोड़ा विस्तार से कहा है। सातवें अध्याय के दूसरे श्लोक में भगवान ने कहा कि मैं विज्ञान सहित ज्ञान कहूंगा, जिसको जानने से फिर जानना बाकी नहीं रहेगा। यही बात भगवान ने नवें अध्याय के पहले श्लोक में कही कि मैं विज्ञान सहित ज्ञान कहूंगा, जिसको जानकर तू अशुभ संसार से मुक्त हो जाएगा। मुक्ति होने से फिर जानना बाकी नहीं रहता। इस प्रकार भगवान ने सातवें और नवें दोनों ही अध्यायों के आरंभ में विज्ञान सहित ज्ञान कहने की प्रतिज्ञा की और दोनों का एक फल बताया। सातवें अध्याय के तीसरे श्लोक में भगवान ने कहा कि हजारों में से कोई एक मनुष्य वास्तविक सिद्धि के लिए यत्न करता है और यत्न करने वालों में कोई एक मेरे को तत्व से जानता है। इसका कारण नवें अध्याय के तीसरे श्लोक में बताते हैं कि इस विज्ञान सहित ज्ञान पर श्रद्धा न रखने से मनुष्य मेरे को प्राप्त न हो करके मौत के रास्ते में चले जाते हैं, अर्थात बार बार जन्मते मरते रहते हैं। सातवें अध्याय के छठे श्लोक में भगवान ने अपने को संपूर्ण जगत का प्रभव और प्रलय बताया। यही बात नवें अध्याय के अठारहवें श्लोक में प्रभव प्रलय पदों से बताई। सातवें अध्याय के दसवें श्लोक में भगवान ने अपने को सनातन बीज बताया और नवें अध्याय के अठारहवें श्लोक में अपने को अव्यय बीज बताया। सातवें अध्याय के बारहवें श्लोक में न त्वेह तेषु ते मयि कहकर जिस राजविद्या का संक्षेप से वर्णन किया था, उसी का नवें अध्याय के चौथे और पांचवें श्लोक में विस्तार से वर्णन किया है। सातवें अध्याय के तेरहवें श्लोक में भगवान ने संपूर्ण प्राणियों को तीनों गुणों से मोहित बताया और नवें अध्याय के आठवें श्लोक में संपूर्ण प्राणियों को प्रकृति के परवश हुआ बताया। सातवें अध्याय के चौदहवें श्लोक में भगवान ने कहा कि जो मनुष्य मेरे ही शरण हो जाते हैं वे माया को तर जाते हैं, और नवें अध्याय के बाईसवें श्लोक में कहा कि जो अनन्य भक्त मेरा चिंतन करते हुए मेरी उपासना करते हैं उनका योगक्षेम मैं वहन करता हूँ। सातवें अध्याय के पंद्रहवें श्लोक में भगवान ने न मा दुष्कृतिनो मूढ़ा कहा था, उसी को नवें अध्याय के ग्यारहवें श्लोक में अवजानंति मा मूढ़ा कहा है। सातवें अध्याय के पंद्रहवें श्लोक में भगवान ने आसुरम भावमाश्रिता पदों से जो बात कही थी, वही बात नवें अध्याय के बारहवें श्लोक में राक्षसी मासुरी चैव प्रकृति मोहिनी श्रिता पदों से कही है। सातवें अध्याय के सोलहवें श्लोक में जिनको सुकृतिनः कहा था, उनको ही नवें अध्याय के तेरहवें श्लोक में महात्मानः कहा है। सातवें अध्याय के सोलहवें से अठारहवें श्लोक तक सकाम और निष्काम भाव को लेकर भक्तों के चार प्रकार बताए और नवें अध्याय के तीसवें से तैंतीसवें श्लोक तक वर्ण आचरण और व्यक्ति को लेकर भक्तों के साथ भेद बताए। सातवें अध्याय के 19वें श्लोक में भगवान ने महात्मा की दृष्टि से वासुदेव सर्वम कहा और 9वें अध्याय के 19वें श्लोक में भगवान ने अपनी दृष्टि से सत्सच्चाहम कहा। भगवान से विमुख होकर अन्य देवताओं में लगने में खास दो ही कारण हैं, पहला कामना और दूसरा भगवान को न पहचानना। सातवें अध्याय के 20वें श्लोक में कामना के कारण देवताओं के शरण होने की बात कही गई और 9वें अध्याय के 23वें श्लोक में भगवान को न पहचानने के कारण देवताओं का पूजन करने की बात कही गई। सातवें अध्याय के 23वें श्लोक में सकाम पुरुषों को अंत वाला नाशवान फल मिलने की बात कही और 9वें अध्याय के 21वें श्लोक में सकाम पुरुषों के आवागमन को प्राप्त होने की बात कही। सातवें अध्याय के 23वें श्लोक में भगवान ने कहा कि देवताओं के भक्त देवताओं को और मेरे भक्त मेरे को प्राप्त होते हैं। यही बात भगवान ने 9वें अध्याय के 25वें श्लोक में भी कही। सातवें अध्याय के 24वें श्लोक के पूर्वार्ध में भगवान ने जो अव्यक्तम व्यक्तिमापन्न मन्यन्ते माम बुद्ध्या कहा था उसी को 9वें अध्याय के 11वें श्लोक के पूर्वार्ध में अवजानन्ति मामूढ़ा मानुषीण तनुमाश्रितम कहा है। ऐसे ही सातवें अध्याय के 24वें श्लोक के उत्तरार्ध में जो परम भाव मजानन्तो ममा व्ययम उत्तमम कहा था उसी को 9वें अध्याय के 11वें श्लोक के उत्तरार्ध में परम भाव मजानन्तो मम भूत महेश्वरम कहा है। सातवें अध्याय के 27वें श्लोक में भगवान ने सर्गे यान्ति कहा था उसी को 9वें अध्याय के 3रे श्लोक में मृत्यु संसार वत्रमनि कहा है। सातवें अध्याय के 30वें श्लोक में भगवान ने अपने को जानने की बात मुख्य बताई है और 9वें अध्याय के 34वें श्लोक में भगवान ने अर्पण करने की बात मुख्य बताई है। परिशिष्ट भाव इस श्लोक में अहंता परिवर्तन की बात मुख्य है। भक्त मैं भगवान का हूं इस प्रकार अपनी अहंता को बदलता है और खुद का संबंध भगवान से जोड़ता है। वह साधननिष्ठ न होकर भगवन्निष्ठ होता है, इसलिए उसको संसार के संबंध का त्याग करना नहीं पड़ता, प्रत्युत वह स्वतः छूट जाता है। कारण कि वर्ण आश्रम जाति योग्यता अधिकार कर्म गुण आदि का भेद होने पर भी ये सब आगंतुक हैं, पर स्वयं के साथ भगवान का संबंध आगंतुक नहीं है, प्रत्युत अनादि नित्य और स्वतः सिद्ध है। तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासूपनिषत्सु ब्रह्मविद्याया योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे राजविद्याराजगुह्ययोगो नाम नवमोऽध्यायः 9। इस प्रकार तत् सत् इन भगवन्नामों के उच्चारण पूर्वक ब्रह्मविद्या और योगशास्त्र में श्रीमद्भगवद्गीतोपनिषद रूप श्रीकृष्णार्जुन संवाद में राजविद्याराजगुह्ययोग नामक 9वां अध्याय पूर्ण हुआ। 9 इस अध्याय में भगवान ने जो मया तत्मिदं सर्वम् आदि उपदेश दिया है वह सब विद्याओं का राजा है और जो भगवान ने अपने आप को प्रकट करके अर्जुन को अपने शरण होने और अपने में मन लगाने के लिए कहा है वह संपूर्ण गोपनीय भावों का राजा है। इन दोनों राजविद्या और राजगुह्य को तत्व से समझ लेने पर योग नित्य योग का अनुभव हो जाता है। अतः इस अध्याय का नाम राजविद्या राजगुह्य योग रखा गया है। 9वें अध्याय के पद अक्षर और उवाच। 1 इस अध्याय में अथ नवमोध्याय के 3 श्री भगवानुवाच के 2 श्लोकों के 446 और पुष्पिका के 13 पद हैं। इस प्रकार संपूर्ण पदों का योग 464 है। 2 अथ नवमोध्याय के 7 श्री भगवानुवाच के 7 श्लोकों के 1112 और पुष्पिका के 51 अक्षर हैं। इस प्रकार संपूर्ण अक्षरों का योग 1177 है। इस अध्याय के 34 श्लोकों में से 20वां और 21वां ये दो श्लोक 44 अक्षरों के हैं और शेष 32 श्लोक 32 अक्षरों के हैं। 3 इस अध्याय में 4 श्री भगवानुवाच। 9वें अध्याय में प्रयुक्त छंद। इस अध्याय के 34 श्लोकों में से 20वां और 21वां ये दो श्लोक उपजाति छंद वाले हैं। बचे हुए 32 श्लोकों में से पहले श्लोक के प्रथम चरण में भगण और तृतीय चरण में नगण प्रयुक्त होने से संकीर्ण विपुला, दूसरे श्लोक के प्रथम चरण में रगण प्रयुक्त होने से रविपुला, तीसरे और 10वें श्लोक के प्रथम चरण में भगण प्रयुक्त होने से भविपुला, 17वें श्लोक के प्रथम चरण में और 13वें तथा 26वें श्लोक के तृतीय चरण में नगण प्रयुक्त होने से न विपुला संज्ञा वाले छंद हैं। शेष 25 श्लोक ठीक पथ्यावक्त्र अनुष्टुप छंद के लक्षणों से युक्त हैं। 9वें अध्याय का सार। भगवान ने 7वें अध्याय से ज्ञान और विज्ञान का विषय कहना आरंभ किया है। ज्ञान से संसार से मुक्ति होती है और विज्ञान से भगवान में प्रेम होता है। बीच में अर्जुन के प्रश्न करने पर 8वें अध्याय में दूसरा विषय चला, परंतु 9वें अध्याय से भगवान पुनः वही विषय कहना आरंभ करते हैं। 7वें अध्याय में भगवान ने संसार की उत्पत्ति का कारण बताया कि परा और अपरा इन दोनों मेरी प्रकृतियों के संयोग से ही संपूर्ण प्राणियों की उत्पत्ति होती है। 6ठा श्लोक। परंतु 9वें अध्याय में संसार की स्थिति बताते हैं कि जिनकी दृष्टि में संसार की सत्ता है उन साधकों के लिए संसार मेरे में है और मैं संसार में हूं। 4था 5वां 6ठा श्लोक। इसी को 6ठे अध्याय में कहा है, योमा पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति। 6:30। परंतु जिन सिद्ध महापुरुषों की दृष्टि में संसार की स्वतंत्र सत्ता नहीं है उनकी दृष्टि में एक मैं ही मैं हूं, वासुदेव सर्वम। भगवान कहते हैं कि यद्यपि संपूर्ण प्राणियों को उत्पन्न करने वाला तथा धारण करने वाला मैं ही हूं, तथापि मैं उन प्राणियों के आश्रित नहीं हूं, प्रत्युत वे प्राणी ही मेरे आश्रित हैं। 9वें अध्याय का 5वां श्लोक। जैसे आकाश में रहने वाली वायु आकाश के आश्रित होती है पर आकाश वायु के आश्रित नहीं होता, ऐसे ही परा और अपरा प्रकृति तो भगवान का स्वभाव होने से भगवान के आश्रित अधीन है पर भगवान परा और अपरा प्रकृति के आश्रित नहीं है। इसलिए जैसे वायु आकाश से ही उत्पन्न होती है, आकाश में ही स्थित रहती है और आकाश में ही लीन होती है, ऐसे ही संपूर्ण प्राणी महासर्ग में भगवान से ही प्रकट होते हैं, भगवान में ही स्थित रहते हैं और महाप्रलय में भगवान में ही लीन होते हैं। 7वां श्लोक। तात्पर्य है कि संपूर्ण प्राणी प्रकृति के आश्रित हैं और प्रकृति भगवान के आश्रित है। 8वां श्लोक। दूसरे शब्दों में भगवान के एक अंश में प्रकृति है और प्रकृति के एक अंश में प्राणी है, इसलिए सृष्टि की रचना करने पर भी भगवान सृष्टि रचना रूप कर्म से बंधते नहीं। 9वां श्लोक। क्योंकि वास्तव में सृष्टि रचना का कार्य भगवान के आश्रित रहने वाली प्रकृति ही करती है। 10वां श्लोक। इस रहस्य को न जानने के कारण बेसमझ लोग भगवान को भी अपनी तरह शरीर अपरा के आश्रित मान लेते हैं, कि जैसे हम शरीर के बिना नहीं रह सकते ऐसे ही भगवान भी शरीर के बिना नहीं रह सकते। 11वां श्लोक। ऐसे लोग आसुरी राक्षसी और मोहिनी प्रकृति के आश्रित रहने वाले होते हैं। 12वां श्लोक। वास्तव में जैसे मनुष्य में शरीर और शरीरी का भेद रहता है ऐसे भगवान में शरीर शरीरी का भेद नहीं है। सत्सच्चामर्जुन 9:19। इसलिए जो मनुष्य भगवान को प्रकृति के आश्रित नहीं समझते वे दैवी प्रकृति के आश्रित रहने वाले होते हैं, अर्थात वे प्रकृति के आश्रित न होकर भगवान के आश्रित होते हैं। 13वां श्लोक। भगवान के आश्रित होने के कारण वे महात्मा कहलाते हैं। कर्मयोग शरीर अपरा की मुख्यता से चलता है और ज्ञानयोग शरीरी परा की मुख्यता से चलता है। एक देश शरीर अथवा शरीरी को लेकर चलने से कर्मयोगी और ज्ञानयोगी एक देशीय होते हैं, परंतु भक्तियोग भगवान की मुख्यता से चलता है, इसलिए भक्त को भगवान ने महात्मा अर्थात महान आत्मा कहा है। वे अनन्य मन से भगवान का भजन करते हैं, कारण कि जब उनकी दृष्टि में एक भगवान के सिवाय अन्य की स्वतंत्र सत्ता है ही नहीं तो फिर उनका मन भगवान को छोड़कर कहां जाए। इसलिए वे भगवान में नित्य युक्त रहते हैं, कभी भगवान से अलग होते ही नहीं। नित्य युक्ता 9:14 नित्याभियुक्ता नाम 9:22। साधक कई प्रकार के होते हैं और अलग अलग साधनों से भिन्न भिन्न उपास्य देवों की उपासना करते हैं, परंतु वास्तव में उन सभी साधकों के द्वारा एक ही समग्र भगवान की उपासना होती है। माम उपास्ते 9:15 त्रैविद्या माम 9:20 तेपि मामेव 9:23 अह ही सर्व ज्ञान भोक्ता च प्रभुरेव च 9 24. कारण कि एक ही भगवान अनेक रूपों में प्रकट हुए हैं. 9. 16 से 19. इस रहस्य को न समझने के कारण जो लोग अपने उपास्य देव को भगवान से अलग मानकर सकाम भाव से उनकी उपासना करते हैं, उनकी उपासना वास्तव में भगवान की होने पर भी अविधि पूर्वक होती है. इसलिए उनका पतन हो जाता है, अर्थात वे जन्म मरण को प्राप्त होते हैं. 9वें अध्याय का 23वां 24वां श्लोक. परंतु भगवान की उपासना करने वाले भगवान को ही प्राप्त होते हैं. जो लोग भगवान को छोड़कर अन्य देवी देवताओं की उपासना करते हैं, उनको अनेक नियमों, विधियों आदि की जरूरत पड़ती है, जिसमें बड़ी कठिनता होती है. परंतु भगवान की उपासना में भाव की जरूरत है, क्रियाओं, नियमों, विधियों आदि की जरूरत नहीं है. 9वें अध्याय का 26वां 27वां श्लोक. भगवान क्रियाग्राही नहीं है, प्रत्युत भावग्राही है, भावग्राही जनार्दन. इसलिए भक्त को सुगमता पूर्वक भगवान की प्राप्ति हो जाती है. इतना ही नहीं, मनुष्य किसी भी आचरण, वर्ण, आश्रम, जाति आदि का क्यों न हो, वह भगवान का भक्त होकर सुगमता पूर्वक भगवान को प्राप्त हो सकता है. 9वें अध्याय के 30वें से 33वें श्लोक तक. 9वें अध्याय के अंत में भगवान कहते हैं, मन्मना भव शून्य. 9:34. इसका तात्पर्य है कि जो कुछ भी है वह मैं ही हूं, मेरे सिवाय और कुछ है ही नहीं. 7वें अध्याय का 29वां 30वां श्लोक. इस बात को दृढ़ता से स्वीकार करना ही मन्मना भव शून्य आदि पदों का तात्पर्य है.
टुडेज क्वेश्चन. प्रश्न: भगवान को प्राप्त करने के लिए श्री कृष्ण के अनुसार कौन सी बातें आवश्यक हैं? अक तप और यज्ञ, बी धन और बल, सी मन लगाना, भक्ति, पूजा और नमस्कार, डी केवल ध्यान. सही उत्तर सी मन लगाना, भक्ति, पूजा और नमस्कार. क्योंकि श्लोक 9.34 में यही चार बातें भगवान ने स्वयं कही हैं, मन्मना, मद्भक्तो, मद्याजी, मां नमस्कुरु. अगला अध्याय शुरू होगा, अध्याय 10, विभूति योग. जानिए भगवान कैसे बताते हैं अपने दिव्य गुणों और शक्तियों के बारे में और क्यों उनका ज्ञान सभी भक्तों के लिए आवश्यक है. पेड बुक प्रमोशन. स्पीकिंग भगवद गीता इन 16 लैंग्वेजेस. अगर आप गीता को मात्र पढ़ना नहीं बल्कि बोलकर समझना चाहते हैं तो यह पुस्तक आपके लिए है. 16 भाषाओं में गीता का ज्ञान, दिव्य अनुभव और उच्चारण का अभ्यास. लिंक https://mzn.to/4jjcoy. श्रवण, पठन और उच्चारण तीनों से आत्मा का उत्थान होता है. हर दिन हम गीता के एक नए श्लोक की गहराई से व्याख्या करते हैं जिससे आपको आध्यात्मिक और व्यावहारिक जीवन में मार्गदर्शन मिले. कमेंट करें और अपने अनुभव साझा करें. क्या आपने कभी गीता से किसी समस्या का समाधान पाया है? कहते हैं कि अगर आप किसी समस्या से गुजर रहे हैं तो श्रीमद् भगवद गीता का चमत्कारिक प्रभाव यही है कि आप प्रभु जी का नाम लेकर कोई भी पृष्ठ खोलें और उसके दाहिने पृष्ठ पर जो पहली पंक्ति होगी वही आपकी समस्या का समाधान होगी. क्या आपने कभी इसे आजमाया है? अगर हाँ तो हमें बताएं कि आज आपने कौन सा श्लोक पढ़ा और उससे क्या सीखा. कमेंट करें और अपने अनुभव हमारे साथ साझा करें. हो सकता है कि आपका अनुभव किसी और के लिए मार्गदर्शन बन जाए.